ये आकाशवाणी दिल्ली है। दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए नामांकन पत्र दाखिल करने में केवल एक दिन शेष। आम आदमी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के कई उम्मीदवारों ने आज अपने अपने नामांकन दाखिल किए। केंद्र सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए 8वें वेतन आयोग के गठन की घोषणा की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कल नई दिल्ली में राष्ट्रीय खेल पुरस्कार प्रदान करेंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल नई दिल्ली में भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो 2025 का उद्घाटन करेंगे और खो खो विश्व कप में आज भारतीय महिला और पुरुष टीम अपने अपने क्वार्टर फाइनल मैच खेलेगी। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए नामांकन दाखिल करने में केवल एक दिन शेष है। विभिन्न राजनीतिक दलों के कई उम्मीदवारों ने आज पर्चे दाखिल किए। हमारे संवाददाता ने बताया कि प्रत्याशियों ने नामांकन भरने से पहले रोड शो, जनसंपर्क यात्राएं और जनसभाएं की। इन जनसभाओं में राजनीतिक दलों के स्टार प्रचारकों ने भी हिस्सा लिया और जनता से पार्टी प्रत्याशियों के पक्ष में मतदान करने की अपील की।
आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता मनीष सिसोदिया, सौरभ भारद्वाज और गोपाल राय ने आज अपने अपने विधानसभा क्षेत्र में नामांकन दाखिल किए। भाजपा के हरीश खुराना, मंजिंदर सिंह सिरसा, आशीष सूद और कपिल मिश्रा ने भी अपने अपने विधानसभा क्षेत्र में नामांकन पर्चे भरे। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और नई दिल्ली सीट से उम्मीदवार संदीप दीक्षित और ओखला सीट से अरिबा खान ने भी आज अपना नामांकन दाखिल किया। नामांकन दाखिल करने से पहले सभी उम्मीदवारों ने अपने अपने क्षेत्र में रोड शो और जनसंपर्क यात्राएं निकाली। वहीं कई उम्मीदवारों ने नामांकन दाखिल करने से पहले धार्मिक स्थल पहुंचकर ईश्वर से जीत की प्रार्थना की। आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने पार्टी प्रत्याशियों के समर्थन में सीलमपुर और घोंडा क्षेत्र में आयोजित रोड शो में हिस्सा लिया। वहीं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने भी नई दिल्ली में एक प्रेस वार्ता में दावा किया कि दिल्ली में कांग्रेस के सत्ता में आने के बाद पार्टी घरेलू गैस सिलेंडर 500 रुपये में उपलब्ध कराएगी। प्रादेशिक के लिए रईसुद्दीन की रिपोर्ट के साथ दीपेंद्र कुमार।
भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली में सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी के कई मुद्दों को लेकर आलोचना की है। पार्टी के वरिष्ठ नेता अनुराग सिंह ठाकुर ने वायु प्रदूषण, स्वच्छ पानी, स्वास्थ्य सुविधाओं के साथ साथ शहर में कथित शराब घोटाले के मुद्दे पर दिल्ली सरकार पर अनियमितताओं का आरोप लगाया।
दिल्ली चुनाव में इतना ही कहूंगा, आप पार्टी के 3 यार दारू, दलाली और आज दिल्ली में आप जहां पर भी जाए, ना पानी साफ, ना हवा साफ, ना सड़कें साफ है, ना यमुना जी साफ। इसलिए आम आदमी पार्टी इस बार चुनाव से साफ हो जाएगी।
इस बीच आम आदमी पार्टी ने फिर आरोप लगाया कि दिल्ली शराब घोटाला उनके नेता अरविंद केजरीवाल और अन्य को निशाना बनाने के लिए रचा गया था। पार्टी के वरिष्ठ नेता संजय सिंह ने कहा कि इस मामले में अरविंद केजरीवाल और कुछ अन्य आम आदमी पार्टी नेताओं की गिरफ्तारियां अवैध थीं।
मुझे लगता है कि ये अब बताने की जरूरत नहीं कि पूरा मामला राजनीतिक दुर्भावना से प्रेरित था, राजनीतिक दुर्भावना के कारण बनाया गया था। इसमें दूर दूर तक कोई सत्यता नहीं थी और गिरफ्तारी पूरी तरीके से अवैध थी, गलत थी।
उधर कांग्रेस ने आज दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए वादों का एक और सेट जारी किया। पार्टी के वरिष्ठ नेता और तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने कहा कि कांग्रेस के सत्ता में आने पर 500 रुपये में रसोई गैस सिलेंडर और 300 यूनिट मुफ्त बिजली उपलब्ध कराई जाएगी।
300 यूनिट फ्री बिजली, महंगा मुफ्त योजना, ये सब सारे लागू करना है तो कांग्रेस पार्टी के साथ हो सकता है। इसीलिए दिल्ली जनता को मैं गुजारिश करता हूँ, इस चुनाव में कांग्रेस पार्टी को जिता दो।
विधानसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी ने आज 9 उम्मीदवारों की चौथी सूची जारी की है। पार्टी ने दिल्ली कैंट सीट से भुवन तंवर को मैदान में उतारा है। वहीं बाबरपुर सीट से अनिल वशिष्ठ को उम्मीदवार बनाया गया है। ग्रेटर कैलाश सीट से शिखा राय चुनाव लड़ेंगी। एनडीए के साथ गठबंधन में जनता दल यूनाइटेड ने बुराड़ी सीट से अपने उम्मीदवार शैलेंद्र कुमार को मैदान में उतारा है। कांग्रेस ने भी आगामी दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए आज 2 उम्मीदवारों की अंतिम सूची जारी की। पार्टी ने तिमारपुर से लोकेंद्र चौधरी को उम्मीदवार बनाया है। दिल्ली में अगले महीने की 5 तारीख को मतदान होगा और 8 फरवरी को मतगणना होगी। भारतीय जनता पार्टी दिल्ली विधानसभा की 70 विधानसभा सीटों में से केवल 68 सीट पर ही चुनाव लड़ेगी। भाजपा ने बाकी 2 सीटों को राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए के घटक दल जनता दल यूनाइटेड और लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास पासवान के लिए छोड़ी है। दिल्ली विधानसभा चुनाव से जुड़ी विशेष श्रृंखला में आकाशवाणी समाचार शहर के विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों पर लेखा जोखा प्रस्तुत कर रहा है। इस श्रृंखला में प्रस्तुत है शकूर बस्ती विधानसभा सीट पर हमारे संवाददाता सकलेन अख्तर की रिपोर्ट।
उत्तरी दिल्ली जिले में स्थित शकूर बस्ती विधानसभा क्षेत्र इस चुनाव की सबसे चर्चित सीटों में से एक है। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में 18 महीने जेल में रहने के बाद जमानत पर बाहर दिल्ली के पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन इस सीट से आम आदमी पार्टी के फिर उम्मीदवार हैं। इस सीट से पिछले 3 बार से लगातार विधायक श्री जैन के लिए ये चुनाव आसान नहीं है, क्योंकि भाजपा इस चुनाव में अपना पूरा दमखम लगा रही है। भाजपा ने इस सीट पर करनैल सिंह को टिकट दिया है, वहीं कांग्रेस ने सतीश लूथरा पर दांव लगाकर इस चुनाव को त्रिकोणीय बनाने की कोशिश की है। शकूर बस्ती विधानसभा क्षेत्र में सभी उम्मीदवार जोर शोर से प्रचार कर अपना अपना विजन लोगों तक पहुंचा रहे हैं। इस विधानसभा में रानीबाग, सरस्वती विहार, ऋषि नगर, पश्चिम विहार, ज्वालाहेड़ी मार्केट जैसे इलाके आते हैं। लगभग 157,000 मतदाताओं वाले इस क्षेत्र में खराब सड़कें, सीवर की समस्या, ट्रैफिक जाम, पार्किंग और कानून व्यवस्था जैसे मुद्दे स्थानीय लोगों के बीच चर्चा का केंद्र बने हुए हैं। मिश्रित आबादी वाली इस सीट के राजनीतिक इतिहास की बात करें तो यहाँ मिला जुला रुख देखने को मिला है। 1993 से अब तक यहाँ पर 2 बार भाजपा, 2 बार कांग्रेस और 3 बार आम आदमी पार्टी ने अपना परचम लहराया है। इस बार कांटे की टक्कर वाले इस मुकाबले में ये देखना दिलचस्प होगा कि क्या सत्येंद्र जैन यहाँ से जीत का चौका लगाते हैं या फिर जनता इस बार कुछ उलट फेर करने के मूड में है।
विधानसभा चुनाव कार्यक्रम की घोषणा के बाद जारी आदर्श आचार संहिता के मद्देनजर दिल्ली नगर निगम शहर में विशेष अभियान चला रहा है। इस अभियान के अंतर्गत आज 7,500 से अधिक होर्डिंग, 36,000 से अधिक पोस्टर बैनर और राजनीतिक दलों के 11,000 से अधिक झंडे हटाए गए। इस बीच दिल्ली पुलिस ने अब तक 215 मामले दर्ज किए हैं। पुलिस ने 139 गैर लाइसेंसी हथियार, 23,400 लीटर से अधिक शराब, 13 करोड़ रूपये से लगभग 60 किलोग्राम मादक पदार्थ और 1,46,00,000 से अधिक की नकदी जब्त की है। पुलिस ने बताया कि 7 जनवरी से अब तक 8,000 से अधिक लोगों को आबकारी कानून और संबंधित प्रावधानों के अंतर्गत गिरफ्तार किया गया है। निर्वाचन आयोग ने राजनीतिक दलों को चुनाव के दौरान प्रचार के लिए साझा की जाने वाली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जनरेटेड और सिंथेटिक सामग्री के प्रयोग की लेबलिंग के लिए आवश्यक उपाय करने का निर्देश दिया है। आयोग ने कहा कि राजनीतिक दलों और उनके प्रतिनिधियों को अपने अभियान में किसी भी एआई जनित विकृत सामग्री का उपयोग करने से बचना चाहिए। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। केंद्र सरकार ने आज केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए 8वें वेतन आयोग के गठन की घोषणा की। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि अभी 8वें वेतन आयोग के गठन से वेतन पैनल की सिफारिशें प्राप्त करने के लिए पर्याप्त समय मिलेगा।
1947 से अब तक 7 पे कमीशन हुए और प्रधानमंत्री जी ने एक रेगुलर रिदम के साथ पे कमीशन बनाने का जो एक संकल्प लिया है उसके हिसाब से 2016 में लास्ट पे कमीशन 7th पे कमीशन स्टार्ट हुआ था, तो 2026 में इसका टर्म कंप्लीट होता है।
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कल राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2024 प्रदान करेंगी। राष्ट्रपति विश्व शतरंज चैंपियन डी गुकेश, पेरिस ओलंपिक में दोहरी पदक विजेता मनु भाकर सहित कई खिलाड़ियों को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार प्रदान करेंगी। 32 खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार दिए जाएंगे। अनुभवी एथलीट सुच्चा सिंह और अनुभवी पैरा तैराक मुरलीकांत पेटकर को अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। इसके अलावा कई खिलाड़ियों को पैराशूटिंग कोच सुभाष राणा, शूटिंग कोच दीपाली देशपांडे, हॉकी कोच संदीप सांगवान, बैडमिंटन कोच एस मुरलीधर और द्रोणाचार्य पुरस्कार भी प्रदान किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल नई दिल्ली में भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो 2025 का उद्घाटन करेंगे। 6 दिवसीय एक्सपो में 9 से अधिक शो, 20 से अधिक कॉन्फ्रेंस और कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इसके साथ ही एक्सपो में मोबिलिटी सेक्टर में नीतियों और पहलों को प्रदर्शित करने के लिए राज्यों के सत्र भी होंगे, ताकि उद्योग और क्षेत्रीय स्तरों के बीच सहयोग को सुदृढ़ बनाया जा सके। इस एक्सपो में वैश्विक महत्व पर विशेष जोर दिया जाएगा और इसमें दुनिया भर के प्रदर्शक और आगंतुक भाग लेंगे। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। इंडिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स में पीवी सिंधु, पुरुष सिंगल्स में किरण जॉर्ज और पुरुष डबल्स में सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई है। सुनते हैं आज खेले गए मैचों पर विस्तृत रिपोर्ट।
दो बार की ओलंपिक पदक विजेता पीवी सिंधु ने आज जापान की मनामी सोइजू पर दूसरे दौर की जीत के साथ इंडिया ओपन 2025 के क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई। सिंधु का अगला मुकाबला कल पेरिस ओलंपिक की कांस्य पदक विजेता इंडोनेशिया की ग्रेगोरिया मारिस्का टोंजुंग से होगा। इससे पहले दिन में भारतीय पुरुष सिंगल खिलाड़ी किरण जॉर्ज ने फ्रांस के एलेक्स लेनियर के खिलाफ दमदार प्रदर्शन करते हुए क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई। जॉर्ज अब कल क्वार्टर फाइनल में चीन के वेंग होंगयांग से भिड़ेंगे। समाचार
खो खो विश्व कप क्वार्टर फाइनल में भारतीय महिला टीम का मुकाबला इस समय मलेशिया से हो रहा है। ताजा जानकारी के लिए चलते हैं नई दिल्ली के इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में मौजूद हमारे संवाददाता अभिषेक कपिल के पास। अभिषेक, महिला वर्ग में भारतीय टीम का मलेशिया से मुकाबला हो रहा है, इस मैच में क्या स्थिति है?
जी मुकेश, अभी महिला टीम में भारत का मुकाबला मलेशिया से चल रहा है। भारत का स्कोर की तरफ देखें तो भारत ने अभी तक 86 अंक हासिल कर लिए हैं, जबकि ओपोनेंट में जो मलेशिया है उसने सिर्फ 20 अंक हासिल किए हैं। तो इस वक्त भारत का पलड़ा मलेशिया के सामने काफी मजबूत दिख रहा है।
जी अभिषेक, अब से कुछ देर में पुरुष वर्ग का क्वार्टर फाइनल भी खेला जाएगा, जिसमें भारतीय टीम का मुकाबला भूटान से होगा। तो इस मुकाबले के बारे में क्या स्थिति है, भारतीय टीम कितनी तगड़ी हो सकती है भूटान के सामने?
मुकेश जी, जैसा मैं आपको बता दूं, इंडिया और भूटान ने अभी तक, भारत ने 3 मैच खेले हैं, तीनों में जीत हासिल करी है। वहीं दूसरी ओर भूटान ने भी 2 मैच खेले हैं और दोनों में जीत हासिल करी है। तो भारत और भूटान के बीच मुकाबला थोड़ा बराबर टक्कर का दिख सकता है, लेकिन यहाँ पे एक अच्छी बात यह कि भारत ने 3 मैच लगातार जीते हैं, तो वो थोड़ा सा भारत के लिए मनोबल बढ़ाने वाला हो सकता है भूटान के सामने।
जी अभिषेक, जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दिल्ली के कई क्षेत्रों में भूमिगत जलाशय और पंपिंग स्टेशन की वार्षिक सफाई के कारण कल और शनिवार को जलापूर्ति प्रभावित रहेगी। दिल्ली जल बोर्ड ने बताया कि आजादपुर मंडी, सादिक नगर, जहांगीरपुरी के सी और डी ब्लॉक, भलसवां, आदर्श नगर तथा राजौरी गार्डन में जलापूर्ति प्रभावित रहेगी। लोग 1916-2852-1123 और 1800-121-7744 नंबरों पर पानी के टैंकर के लिए जल बोर्ड से संपर्क कर सकते हैं। भारतीय रेलवे ने 50 दिन के लिए दिल्ली और श्री माता वैष्णो देवी कटरा के बीच एक वंदे भारत एक्सप्रेस रेलगाड़ी को आज से रद्द करने की घोषणा की है। रद्द की गई रेलगाड़ी नई दिल्ली और जम्मू कश्मीर के कटरा के बीच चलती है। रेलगाड़ी को रखरखाव कार्य के लिए अस्थायी रूप से बंद किया जा रहा है और ये 6 मार्च तक रद्द रहेगी। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में वायु गुणवत्ता में गिरावट को देखते हुए वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने चरणबद्ध कार्रवाई योजना ग्रैप 3 और 4 के अंतर्गत सभी कार्रवाई लागू करने का फैसला किया है। ग्रैप 3 के अंतर्गत पूरे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में गैर जरूरी निर्माण कार्यों तथा सड़क निर्माण और खनन गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाया जा रहा है। दिल्ली तथा गुरुग्राम, फरीदाबाद, गाजियाबाद और गौतम बुद्ध नगर जिलों में BS3 पेट्रोल वाहन और BS4 डीजल वाहनों पर भी पाबंदी रहेगी। इसके अलावा दिल्ली सरकार और NCR की राज्य सरकारें अनिवार्य रूप से कक्षा 5 तक के बच्चों के लिए ऑनलाइन कक्षाओं का भी आयोजन करेंगी। चरणबद्ध कार्रवाई योजना 4 के अंतर्गत विद्यालयों को अनिवार्य रूप से कक्षा 6 से 9 और 11वीं कक्षा के विद्यार्थियों के लिए ऑफलाइन और ऑनलाइन कक्षाओं का आयोजन करना होगा। राजधानी दिल्ली में शीतलहर और कोहरे के साथ कड़ाके की ठंड जारी है। इसका असर यातायात और रेल परिचालन पर भी देखा जा रहा है। शहर के कुछ हिस्सों में आज सुबह हल्की वर्षा दर्ज की गई। मौसम विभाग के अनुसार आज का अधिकतम तापमान 19.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। वहीं कल का अधिकतम तापमान 19 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 8 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए नामांकन पत्र दाखिल करने में केवल एक दिन शेष। आम आदमी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के कई उम्मीदवारों ने आज नामांकन दाखिल किए। केंद्र सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए 8वें वेतन आयोग के गठन की घोषणा की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कल नई दिल्ली में राष्ट्रीय खेल पुरस्कार प्रदान करेंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल नई दिल्ली में भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो 2025 का उद्घाटन करेंगे और खो खो विश्व कप में भारतीय महिला और पुरुष टीम ने क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।